तो आज हमने फिल्म जो देखी है उस फिल्म का नाम है दार्जिलिंग लिमिटेड, और ये अनुराग बासु की फिल्म नहीं है, ये वेस एंडरसन की फिल्म है। और सरप्राइजिंगली यूजुअली मुझे फॉरेनर्स की फिल्म जो इंडिया में बेस्ड होती है उतनी पसंद नहीं आती है, एक आध को छोड़ के, मतलब जिसमें इंडिया एक्सप्लिसिटली एज अ क्या बोलूँ एज अ प्रॉप यूज़ किया गया है या एज अ स्टोरी का पार्ट यूज़ किया गया, प्रॉप सही वर्ड नहीं है, मुझे यूजुअली वो पसंद नहीं आती है क्योंकि कहीं ना कहीं एक मिसकंस्ट्रूडेड सा वो लगता है कि ऐसा थोड़ी होता है। बट सरप्राइजिंगली मुझे ये बहुत पसंद है ये वाली फिल्म। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म के तीन मेन कैरेक्टर्स, जो तीन ब्रदर्स के कैरेक्टर्स हैं, द विटमैन ब्रदर्स फ्रॉम दार्जिलिंग लिमिटेड। तो मैं पहले आपको हल्का सा इसका जो सिनॉप्सिस है वो पढ़ देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे दो फीडबैक आए थे पिछले एपिसोड से कि मैं सीन्स को ज़्यादा रेफर करूँ और मतलब सिर्फ रैम्बल नहीं करता जाऊँ जिन चीज़ों के बारे में मुझे बात करनी है। सीन से रेफर करने से बेसिकली एक एंकर मिल जाता है, जो कि बहुत ही फेयर क्रिटिसिज्म है मेरे हिसाब से, तो वो एक करने वाला हूँ मैं। बाय गॉड क्या ब्राइट स्क्रीन है इसकी, हे भगवान की लाइट है मेरी ये ऑलमोस्ट। बट नहीं, तो दो क्रिटिसिज्म मिले, एक तो कि सीन्स यूज़ करूँ तो ये खाली जगह मैंने छोड़ रखी है यहाँ पे, यहीं पे आपको जो भी मेरे सीन्स जब मैं रेफ़र कर रहा हूँ वो यहाँ पे आ जाएंगे होपफुली। दूसरी ये कि सिनॉप्सिस एक बार पढ़ देना चाहिए ताकि जिन लोगों ने नहीं देखी है उनको शायद इंटरेस्ट आ जाए या कुछ रेफरेंस बेस मिल जाए एपिसोड का उसके बारे में बात करने से पहले। तो द दार्जिलिंग लिमिटेड की ये सिनॉप्सिस जो गूगल से उठाई मैंने पता नहीं कहाँ से, स्ट्रेंज ब्रदर्स फ्रांसिस पीटर एंड जैक रीयूनाइट फॉर अ ट्रेन ट्रिप अक्रॉस इंडिया। द सिबलिंग्स हैव नॉट स्पोकन इन ओवर अ ईयर एवर सिंस देयर फादर पास्ड अवे। फ्रांसिस इज रिकवरिंग फ्रॉम अ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, पीटर कैन नॉट कोप विथ हिज वाइफ्स प्रेगनेंसी एंड जैक कैन नॉट गेट ओवर हिज एक्स लवर। द ब्रदर्स फॉल इन टू ओल्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एज फ्रांसिस रिवील्स द रियल रीजन फॉर द रीयूनियन टू विजिट देयर मदर इन अ हिमालयन कॉन्वेंट। ओके आई थिंक फेयर इनफ है ये सिनॉप्सिस, मतलब ऑब्वियसली सिनॉप्सिस है बट द मूवी इज सो मच मोर देन जस्ट जो यहाँ पे लिखा गया है, तभी शायद मैं कवर कर रहा हूँ। मुझे बड़ी पसंद आती है जब मैं थोड़ी सी अंडररेटेड मूवी को कवर करता हूँ ना, क्योंकि एक पर्सनल सा एलिमेंट लगता है उसमें कि हाँ मुझे पसंद आई, किसी को नहीं पसंद आई, थोड़ा सेल्फिश भी है, शायद ईगो भी है, मुझे नहीं पता बट कुछ है वो करके। हाँ ओके, तो बेसिकली तीन भाइयों की कहानी है, तीन भाई जिनके फादर की डेथ हो गई थी कुछ एक साल पहले, और वो लोग बहुत ही एक डिसफंक्शनल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी मॉम उन्हें छोड़ के चली गई थी इंडिया में नन बनने के लिए, और उनके फादर जो थे बहुत ही वेल ऑफ थे, उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं लेकिन वेल ऑफ थे, काफ़ी रिस्पेक्टेड थे, और ये तीन आई थिंक कहीं उन दोनों के बीच में, मतलब उनके मदर और फादर के बीच में, ये लोग कहीं ढंग से खुद को शायद डिस्कवर नहीं कर पाए या कभी समझ नहीं पाए कि वो लोग क्या हैं क्या नहीं। और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह था कि ये तीन भाइयों का डायनेमिक है राधा दिन की, दो में हमेशा आप देखोगे कि या तो एकदम अड्रिफ्ट हो जाएंगे या फिर एक एक वो मिल जाता है कॉमन ग्राउंड, लेकिन तीनों में, तीन लोगों में या तीन भाइयों में स्पेशली, सिस्टर्स की बात नहीं कर सकता उतना मेरे को एक्सपीरियंस ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन तीन भाइयों में आई थिंक एक वो डायनेमिक होता है कंपेटिटिव कि हाँ एक से ऊपर ये उससे ऊपर ये, नहीं मैं इसमें बेटर नहीं हो सकता तो मैं कम से कम इसमें बेटर हो जाऊँगा इस टाइप से, और वो बहुत ही एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है वो डायनेमिक, क्योंकि सिर्फ जो वो तीन लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं सिर्फ उन्हें ही क्लैरिटी है, और जो आप थर्ड पर्सन व्यू जो उसे देख रहा है उन्हें वो इतना बड़ा एक हॉट मेस दिखेगा ना वो डायनेमिक में, और उस डायनेमिक को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है इस फिल्म में। तो डिसफंक्शनल, तीन डिसफंक्शनल भाई एक ट्रेन जर्नी पर जाते हैं, एक सो कॉल्ड एक स्पिरिचुअल जर्नी पर। तो तीनों भाइयों के नाम, सबसे पहला तो आई थिंक पैट्रिक है, जो मतलब सबसे ज़्यादा ग्रीफ स्ट्रिकन है अपने फादर के लॉस से। बाय द वे डिसफंक्शनल से मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इन्हें प्रोसेस करना नहीं आता है। मैं अभी एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ फिल्म, क्योंकि मुझे लगता है लोगों ने देखी नहीं है, तो अगर आपने देखी है तो सॉरी थोड़ा सा रिपीट लगेगा ये। तो पैट्रिक जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रीफ स्ट्रिकन है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एंग्री है, और वो इस फिल्म में बहुत सारे सिम्बोलिज्म यूज़ किए गए हैं दिखाने के लिए कि किस तरीके से वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है अपने फादर के लॉस से। आगे मैं कवर करूँगा उसको, आई थिंक वो कंक्लूजन पे ज़्यादा बेटर सूट होगा कि वो कैसे दिखाएंगे वहाँ पे। दूसरा जो भाई है जैक, आई थिंक वो सबसे छोटा भाई है और उसने वो मतलब वो ऐसा सपनों की दुनिया जीता है ऐसी लाइफ में। वो एक राइटर है, किताबें लिखता है, शॉर्ट स्टोरीज लिखता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो आप मतलब उस एज पे रहते ही हो कि क्या रियलिटी और क्या स्टोरी है हमेशा, क्योंकि आप स्टोरी ढूंढते रहते हो उस मेंटेलिटी में। और जो तीसरा भाई है वो है फ्रांसिस आई थिंक सबसे बड़ा भाई है, और उसने बहुत सारी चीज़ें अपनी मदर से इनहेरिट की है जो हमें फिल्म के एंड में पता चलती हैं। उसके मैनरिज्म बहुत सारे उसकी मदर जैसे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक है, मतलब उसको लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए चीज़ों पे, खुद को ऐसा दिखाने के लिए कि हाँ मैं यूज़फुल हूँ। तीन बहुत ही स्टार्किंग पर्सनालिटीज़ हैं, बट एट द सेम टाइम सिमिलर भी हैं, क्योंकि वो तीनों भाई हैं। और ये सबसे आई थिंक सबसे मेरे को अजीब चीज़ लगती है एक फैमिली डायनेमिक की, कि कैसे बहुत ही अलग पर्सनालिटी वाले लोग भी सिमिलर लगने लगते हैं, क्योंकि बस वो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुझे नहीं पता है कैसे होता है, बट बहुत फैसिनेटिंग है मेरे लिए। और ये तीनों की तीनों ही एस्केपिज्म ढूंढ रहे हैं कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड का ट्रेंड। और बाय एस्केपिज्म आई मीन कि तीनों की अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि ये क्या है, इन्हें पता नहीं है कि ये फंक्शन कैसे करते हैं या इन्हें फंक्शन कैसे करना चाहिए। वो उस जर्नी में जहाँ पे सोसाइटी इन्हें बोलती है कि हाँ ठीक है आपके फादर का लॉस हुआ है तो आपको इस तरीके से ग्रीव करना चाहिए, आपको इस तरीके से उसको प्रोसेस करना चाहिए, लेकिन ये तीनों एक अपने आप को इस पोजिशन में पाते हैं कि ये लोग प्रोसेस नहीं कर पाते हैं उस तरीके से, ये लोग ग्रीफ नहीं कर पाते हैं उस तरीके से। तो ये पूरी फिल्म उस ग्रीफ के प्रोसेस को उस पूरे प्रोसेस को प्रोसेस करने वाला एक जर्नी है, कि कैसे ये अपने आप पे इम्पोज करते हैं एक सोसाइटल नॉर्मैलिटी वाला एक स्पिरिचुअल जर्नी अक्रॉस इंडिया और कैसे उस आयरॉनिकली ही सही उस जर्नी के थ्रू, उस सुपरफिशियल जर्नी के थ्रू ही वो अपने आप को इस तरह से ढूंढ पाते हैं, अपने अंदर की चीज़ें, अपने भाइयों के आपस के रिलेशनशिप के बीच की चीज़ें, कुछ इस तरीके से कुछ वो एलिमेंट ढूंढ पाता है जहाँ पे उन्हें प्रोसेस करने का, ग्रीफ और लॉस प्रोसेस करने का एक तरीका मिल जाता है जो कि उनके लिए है, ना कि सोसाइटी के लिए। और आई थिंक ये इस फिल्म की जो पूरी एक स्टोरी आर्क है वो यही है कि कैसे हम सुपरफिशियलिटी से असली रियलिटी या असली एक्सेप्टेंस की तरफ जाते हैं थ्रू द डायनेमिक्स ऑफ द थ्री ब्रदर्स। तो इनिशियली तीनों के तीनों की अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। पीटर जो है, पीटर विटमन, वो आई थिंक उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, 6-6 हफ्ते में उसका बच्चा होने वाला है, और वो गधा इंडिया में आके ट्रेन में जर्नी कर रहा है उसको अपनी वाइफ के पास होना चाहिए लेकिन वो ट्रेन में जर्नी कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके फादर के लॉस के बाद जब वो खुद प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि मेरे फादर के लॉस हुए, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ या इसको कैसे प्रोसेस करूँ। आई थिंक कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डाउट क्रिएट हो गया कि मेरा जो मेरा बच्चा होगा, जो मेरा ऑफस्प्रिंग होगा, क्या मैं उसे रेज कर पाऊँगा, क्या वो प्रॉपरली प्रोसेस कर पाएगा जब मैं ही नहीं प्रोसेस कर सकता हूँ नॉर्मल सोसाइटल चीज़ों को। और आई थिंक वो डाउट की वजह से ही जस्ट एस्केप्ड वहाँ से, उस सिचुएशन से, बिना बताए अपनी बीवी को। भाई तो एक हफ्ते बाद फ़ोन करके बोलता है कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, प्लीज़ डांटना मत। तो हाँ, ये पीटर की स्टोरी है, बैक स्टोरी जब हम उसको देखते हैं धीरे धीरे रिवील होती है। दूसरा फ्रांसिस है। फ्रांसिस सबसे ज़्यादा अपने मदर से क्लोज है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि उसकी मैनरिज्म्स बहुत सिमिलर है अपने मदर से। वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक है, एग्जैक्ट वही डायलॉग्स बोलता है जो उसकी मदर बोलती है, जो हमें फिल्म के थोड़ी बाद में पता चलता है। और एकदम उसको एक यूज़फुलनेस चाहिए, और शायद उस यूज़फुलनेस को ढूंढने के चक्कर में या अपने आप को इस्टेब्लिश करने के चक्कर में, या जो एक स्टिग्मा होता है ना कि आप बड़े भाई हो और आपको इन अ वे रेज करना है अपने अपने फेलो सिबलिंग्स को, आई थिंक उस प्रेशर के चक्कर में उसने शायद अपने आप को कहीं ना कहीं खो दिया है, उस कंट्रोल फ्रीक बनने के चक्कर में जो वो नहीं है। और ये उसकी जर्नी है, ये उसका बैकग्राउंड है इस मूवी में आते हुए। जैक सबसे छोटा भाई है और राइटर है, स्टोरीज लिखता है, किताबें लिखता है, और उसकी लाइफ में एक बहुत ही मेस्ड अप रिलेशनशिप चल रहा है, ख़त्म हो चुका है किसी को नहीं पता, क्योंकि उसकी एक शॉर्ट फिल्म थी, वेस एंडरसन ने इस मूवी का एक प्रीक्वल बनाया था, एक शॉर्ट फिल्म, होटल शेवलियर नाम था उसका आई गेस, नैटली पोर्टमैन थी उसमें। और उस मूवी में मैं ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छा एक और एपिसोड बन सकता है, बट उस मूवी में आप देखोगे किस तरीके से जैक जो कैरेक्टर है वो दिखाना कुछ और चाहता है लेकिन वो है कुछ और। वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है कि वो एक रियल कैरेक्टर है, वो हमेशा एक फिक्शनल कैरेक्टर के लेंस से खुद को देखता है। और वो उससे तो काफ़ी रिलेटेबिलिटी है, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया था लास्ट एपिसोड में, कि हम लोग जितने भी एस्केपिस्ट लोग हैं सारे के सारे अपने आप को एक लेंस, एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से इवेंचुअली देखने ही लगते हैं। और जैक हमारा रिप्रेजेंटेशन है इस फिल्म में इन अ वे। तो ये फिल्म जो है इन तीनों के इस बैकग्राउंड के साथ इन तीनों के डायनेमिक्स को हाईलाइट करती है, इन तीनों के प्रोसेस को हाईलाइट करती है कि कैसे उन्होंने अभी तक अपने फादर के लॉस को मतलब प्रोसेस किया है अपने अंदर, और कैसे ये फंक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ। ये फिल्म एक बहुत अच्छी स्टडी है टूवर्ड्स द डायनेमिक्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंगस्ट फैमिली मेम्बर्स, आई वुडंट इवन से ब्रदर्स, मैं बोलूँगा फैमिली मेम्बर्स के बीच में। और एक बहुत अच्छी स्टडी है बिटवीन हाउ द जर्नी ऑफ प्रोसेसिंग ग्रीफ और हाउ द जर्नी ऑफ डीलिंग विद ट्रॉमा इज़ वेरी पर्सनल रादर देन सोसाइटल। सोसाइटी क्या करती है, सब लोग को शायद उससे इनर जो एक क्लोजर मिलना चाहिए ना एक ग्रीफ के बाद या एक लॉस के बाद, शायद सबको ना मिले वो। ये दो आई थिंक प्लॉट पॉइंट्स हैं इस पूरे फिल्म के, जो मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू कवर करना चाहूँगा। तो पहले कम्युनिकेशन, मेरे ख्याल से जो एक कम्युनिकेशन वाला पार्ट है उसको टैकल करते हैं, क्योंकि बहुत फैसिनेटिंग लगा था मुझे। टू बी ऑनेस्ट, ये फिल्म मैंने तब देखी थी, आई थिंक अब तो काफ़ी टाइम हो गया, 2011-12 में जब मैंने इसको पहली बार देखी थी, मुझे नहीं पसंद आई थी क्योंकि समझ ही नहीं आई थी मुझे, शायद उतना सोसाइटल बोलना चाहिए क्या, बट हाँ अवेयरनेस नहीं थी मेरे को सराउंडिंग्स की, खुद की या बाहर के लोगों की। आपको 2011-12 में कितने साल का था, होली शिट 17 साल का था तो उस टाइम पे तो उतना कुछ समझ नहीं आता है। और आई थिंक मैंने इसको दूसरी बार तब देखी थी जब मैंने नर्ड राइटर का एक वीडियो देखा था इस फिल्म के बारे में. नर्ड राइटर का मैं काफ़ी टाइम से वीडियो देख रहा हूँ, आप जानते होंगे वो एक वीडियो ऐसे इस यूट्यूब पे, और उसने एक वीडियो बनाई थी इस फिल्म के कम्युनिकेशन फॉर्म के ऊपर कि कैसे ये लोग कम्युनिकेट करते हैं, और मैं उसी को इन अ वे एक्सटेंड कर रहा हूँ. आप मान लो कि आप फैमिली में एक डिस्कशन कर रहे हो, सब लोग फैमिली में बैठे हुए आप डिस्कशन कर रहे हो और क्वेश्चनिंग्स हो रही है यहाँ से वहाँ. हमेशा आपने एटलीस्ट मेरे साथ ये होता है, मेरी फैमिली के साथ ये होता है कि आप जब देखते हो या आप जब उस कॉन्वर्सेशन को सुनते हो एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको हमेशा लगता है कि हर एक बंदा दूसरे बंदे के क्वेश्चन को प्रीएम्प्ट करके आंसर करना चाह रहा है कि अच्छा हाँ ये क्वेश्चन पूछेगा मैं इसका आंसर ये दे देता हूँ. तो अगर आप उस फैमिली लूप में बिलोंग नहीं करते हो आपको कॉन्वर्सेशन इतनी डिसकनेक्टेड लगेगी. आपको लगेगा जैसे नोट डाटर का एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, उसने ये बताया था कि मान लो कि एक ग्रुप चैट है जहाँ पे सब कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, और मान लो कि एक इंटरनेट का कनेक्शन ख़राब है और ऐसे लिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इस बंदे ने कुछ लिखा, इस बंदे ने वो पढ़ा नहीं लेकिन अपनी बात बोल दी, और फिर इस बंदे ने सोचा कि अच्छा ये तो ये लिखने वाला था उसके बदले मैं ये आंसर दे देता हूँ. मैं यहाँ पे आई थिंक शायद चला रहा हूँगा कि वो कैसा लग रहा है, बट बहुत ही एक डिसफंक्शनल चैट लगता है. ऐसा लगता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं अगर आप उसको थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो. लेकिन आप जब उस फैमिली के मेम्बर होते हो या आप उस ग्रुप चैट के मेम्बर होते हो, पता नहीं कैसे वो सेंस बनती है उन सब चीज़ों की. और बहुत बार ऐसा भी होता है कि फैमिली डायनामिक्स जो एक बहुत ही अजीब चीज़ होती है, क्योंकि वो हार्मफुल नहीं होती है लेकिन फिर भी लोग मतलब वो काइंड ऑफ यूजलेस होती है, काइंड ऑफ पॉइंटलेस होती है, बट फिर भी लोग वो एक तरीके से हमेशा उसके लिए पुश करते रहते हैं कि देख मैंने तेरा आंसर प्रेडिक्ट कर लिया, देख मैंने तेरा क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर लिया, देखा मेरे को सब पता है इस तरीके से. जैसे या इसका जो अपना हिंदी बॉलीवुड वाला इक्विवेलेंट है, माँ तो माँ होती है ना, नहीं ये उसका सॉरी तो ये बेसिकली उसी का वेस एंडरसन वर्जन है. तो ये जो एक क्लटर्ड कम्युनिकेशन फॉर्म है फैमिली मेंबर्स के बीच में, इस फिल्म ने वो इतने अच्छे से हाईलाइट की है, स्पेशली ये ट्रेन वाले सीन में जहाँ पे वो एक साल बाद मिलते हैं और प्रॉपरली बात कर रहे हैं एक दूसरे से, और इतना सुपरफिशियली बात करते हैं एक दूसरे से, और बीच बीच में एक आध वो चीज़ें बोल देते हैं जो वो लोग एक्चुअली मीन करते हैं, या शायद हमें ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली मीन करते हैं, और शायद उन लोगों के लिए वो सब कॉमन बातें हैं, शायद उतनी सुपरफिशियल नहीं है. और वो फैमिली डायनामिक्स मुझे, वो कम्युनिकेशन डायनामिक्स मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि फिल्मों में हम यूजुअली जब देखते हैं कि एक आदमी डायलॉग बोलता है फिर ख़त्म करता है, फिर दूसरा आदमी डायलॉग बोलता है फिर ख़त्म करता है, ऐसे बैक एंड फोर्थ हो रहा है, और असली लाइफ में वैसे कॉन्वर्जेशन नहीं होता है. एक और बेन स्टिलर की फिल्म थी जिसमें एक दूसरे को इंटरकट करते रहते थे जो कैरेक्टर्स थे, वो बहुत रियल लगती कॉन्वर्जेशन. इस फिल्म की कॉन्वर्जेशन इतनी ज़्यादा रियल लगती थी ना, आप मतलब सिर्फ फैमिली डायनेमिक्स से नहीं, मतलब जस्ट इन नॉर्मल तरीके से देखो, लोग एक दूसरे को कट कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को सुनना नहीं चाह रहे हैं, पहले से प्रीएम्प्ट करना चाह रहे हैं कि ये क्या बोलने वाला है और मैं उसके बदले जो क्वेश्चन वो सोच रहा है उसका आंसर दे के रहूँगा. मतलब मैं क्वेश्चन भी नहीं बोलूँगा कि तू ये बोलना चाह रहा है, नहीं मैं सीधे आंसर दे दूंगा उसका जो तू सोच रहा है कि तू क्वेश्चन सोचने वाला है, विच इज़ सो मेस्ड अप अगर आप ऐसे देखो तो. लेकिन हम पता नहीं क्यों हमेशा पुश करने का ट्राई करते हैं उस लेवल को कि हाँ मैं अपनी फैमिली से इतना क्लोज हूँ, या मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को इतना क्लोजली जानता हूँ. और इन अ वे एक लिमिट पता नहीं होती है कि नहीं, बट एक एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं आ जानी चाहिए कि हाँ मतलब ठीक है, मैं शायद अपने हर फैमिली के हर मेंबर को इतने तरीके से नहीं जानता हूँ, शायद कुछ पार्ट्स हैं जो मैं नहीं समझता हूँ, और वो ठीक है, वो नॉर्मलाइज्ड है, और बट वो नहीं होता है मेरी फैमिली में भी नहीं होता है, आई डोंट थिंक इंडियन फैमिली में होता है, क्योंकि हम लोग तो इनहेरेंटली काफ़ी क्लोज निट रहते हैं जो इंडियन फैमिली होती है. तो ये जो एक डायनेमिक था ना इन तीनों भाइयों का, और कैसे वो डायनेमिक ओवर द पीरियड ऑफ द फिल्म चेंज नहीं होता है, मतलब आप इनके कैरेक्टर्स को चेंज होते हुए देखेंगे लेकिन इनके कॉन्वर्जेशन स्टाइल को चेंज होते हुए नहीं देखेंगे। वो शायद हम क्योंकि इन कैरेक्टर्स को ज़्यादा बेटर समझने लगते हैं इस फिल्म के एंड तक, तो जो उनकी ग्रुप चैट वाली बातें हो रही होती है ना, जो हमें लगता था पहले डिसकनेक्टेड है, शायद हमें वो बस सेंस बनने लगती है। बट वो बात तब भी उस तरीके से ही करते हैं, वो बात तब भी इसी डिसकनेक्टेड फॉर्म में ही करते हैं। और ये पता नहीं क्यों मुझे बहुत बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि इंस्टेड ऑफ अ कैरेक्टर आर्क हम ग्रो कर रहे हैं इस फिल्म के साथ, हम कनेक्ट हो रहे हैं इन कैरेक्टर्स के साथ। बहुत ही पता नहीं, ये मेरे को बहुत बहुत अच्छा एक मतलब कॉन्सेप्ट लगा। मैंने कभी, मैं नहीं रिकलेक्ट कर सकता कि मैंने ये कब देखा था कि हाँ, यूजुअली कैरेक्टर्स काम करता है एक फिल्म में अपने आप को ग्रोथ दिखाने के लिए, यहाँ हम काम कर रहे हैं। शायद इसी वजह से ये मूवी शायद उतनी पॉपुलर भी नहीं थी, क्योंकि एफर्ट, थोड़ा सा तो एफर्ट है ये मूवी देखना, नॉट इन द सेंस कि जैसे क्रिस्टोफर नोलन की मूवी देखने में एक्यूमन वाला एफर्ट नहीं है, बस जैसे रिलेशनशिप में एफर्ट लगाना पड़ता है ना लोगों को समझने के लिए, ये उस टाइप का एफर्ट है। और ये इसी वजह से फिल्म जिन लोगों को पसंद आती है उन लोगों को बहुत पर्सनली पसंद आती है, क्योंकि आप उन कैरेक्टर से ना एक इमोशन डेवलप कर लेते हो, एक कनेक्ट डेवलप कर लेते हो, आप उस फैमिली का पार्ट हो जाते हो। और हाँ, मेरे को फिल्म, मैं फिल्म बहुत पर्सनली देखता हूँ, तो मुझे इस तरह की फिल्म बहुत अच्छी लगती है। होपफुली अगर आप देखोगे इस पॉडकास्ट के बाद तो आपको भी शायद पसंद आए। दूसरी चीज़ जो कम्युनिकेशन के बारे में जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये था कि कभी कभी पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं, मेरे साथ बहुत होता है, क्योंकि ये जैसे मैं इस तरीके से बहुत बात करता हूँ एक कैमरा के सामने बैठ के, या फिर ऐसे ही बड़बड़ करता रहता हूँ मैं सोफे बैठ के बिना कैमरा के भी अकेले अकेले ही। आप जब किसी से बात कर रहे हो या खुद से बात कर रहे हो, कितनी बार आप चीज़ें बस बोलने के लिए बोलते हो और कितनी बार आप चीज़ें दूसरे से बात करने के लिए बोलते हो? भाई बोलने के लिए बोलते हो आई मीन कि आप खुद को एम्फसाइज करवा रहे हो वो पार्ट या फिर वो पॉइंट, आप खुद को दिखाना चाह रहे हो कि हाँ मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, हाँ मैं यही, मेरा बोलने का यही मतलब है। मतलब आप बात तो दूसरे से कर रहे हो, आप कॉम्पिटिशन किसी और से कर रहे हो, लेकिन आप खुद को रीइन्फोर्स कर रहे हो वो बात। इस फिल्म में काफ़ी सारे सीन्स में वो टेक्निक एक यूज़ की गई है कि ये लोग अपने आप को, अपने अंदर की बात को रिवील करना चाह रहे हैं किसी दूसरे को वो सेम बात बोल के। मतलब वो एड्रेस्ड किसी और के लिए है लेकिन वो अपने खुद को वो रीइन्फोर्स करना चाह रहे हैं। जैसे इस फिल्म के स्टार्टिंग में ही एक सीन था जब फ्रांसिस चल रहा होता है अपने ट्रेन के कंपार्टमेंट में, दोनों भाई उसके पीछे पीछे होते हैं और वो बोलता है कि हे आई लव यू गाइस, और वो इतना ऑड लगता है, इतना ऑकवर्ड लगता है, वो ऐसा लगता है कि ये खुद को मतलब फील करवाना चाह रहा है कि खुद को रियलाइज़ करवाना चाह रहा है कि हाँ हाँ आई लव दिस गाइस इस टाइप से। और वो इतने जो पता नहीं क्यों वो इस फिल्म में इस तरह की सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आई थिंक इस फिल्म को देखने के बाद, मतलब चार साल पाँच साल पहले जब मैंने फिल्म देखी थी, मैंने जब लोगों के अंदर ये ऑब्जर्व करना शुरू किया ना, मैं काफ़ी मतलब ऐसा था कि ये लोग करते हैं, लोग बोलते हैं, लोग उसको क्वेश्चन की तरह नहीं पोस्ट करते हैं डायरेक्टली कि हम ये डायरेक्टली तुमसे कन्फर्म करना चाह रहे हैं, वो बस डाल देते हैं और फिर लोगों का सेंटिमेंट रीड करके अपना सेंटिमेंट बिल्ड करते हैं उसके ऊपर कि हाँ ठीक है, इस बंदे का रिएक्शन ऐसा था इस बात के ऊपर, तो अब मैं इस पर कॉन्फिडेंस कर सकता हूँ। पता नहीं इसको आप झूठ बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, मुझे नहीं पता, क्योंकि रीइन्फोर्स्ड लर्निंग है। मैं यहाँ मशीन लर्निंग नहीं घुसाना चाहता वैसे, सॉरी, बट एक तरीके से रीइन्फोर्स्ड लर्निंग है ये कि हम अपने अंदर की बात एको करवा रहे हैं किसी दूसरे के सेंटिमेंट के थ्रू ताकि हम अपना सेंटिमेंट बिल्ड कर सकें। और ऑब्वियसली सबके साथ काम नहीं करता है, मोस्टली लाइकली ये तभी काम करता है जब जिस बंदे के थ्रू आप एको करवा रहे हो वो आपसे, आप उसको ट्रस्ट करते हो, आप उसके सेंटिमेंट को ट्रस्ट करते हो। और अच्छा, एक चीज़ और मुझे बोलना था, इस फिल्म में ये लोग काफ़ी बार एम्फसाइज करते हैं कि डू यू ट्रस्ट मी, या हमें ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे पर, या ऐसा कुछ। तो मुझे एक चीज़ बड़ी फैसिनेटिंग लगती है कि क्या हम ट्रस्ट कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं? क्योंकि जब आप फैमिली होते हो, आई थिंक जब आप इतने क्लोज होते हो कि आप फैमिली होते हो, तो आप कई चीज़ों में सामने वाले को ट्रस्ट कर सकते हो और शायद कई चीज़ों में नहीं करते हो. और सिर्फ फैमिली की बात नहीं, आई थिंक ये बस एक क्लोज रिलेशनशिप की भी एक मेरे ख्याल से एक ट्रेट होती है. और मेरे को कभी पता नहीं चलता है कि मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने सुना है मैंने शायद एक्सपीरियंस पर्सनली इतना नहीं किया, क्योंकि ट्रस्ट का मेरा उतना झोल झाल रहा नहीं है कभी लाइफ में फॉर्चुनेटली, कि कैन ट्रस्ट बी कंपार्टमेंटलाइज. लाइक मैं इसके इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करता हूँ, मैं इसके सेंटिमेंट को ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन मैं इसके डिसीजंस को ट्रस्ट नहीं करता हूँ. क्या ये हो सकता है? क्या ये कंपार्टमेंटलाइज हो सकता है? और मेरे को इसके बारे में जो एक डिस्कशन सोचना है या जो एक डिस्कशन करना है उसके लिए, मतलब पता नहीं कहाँ होगा वैसे, बट आपके पास अगर इसका कोई मतलब ओपिनियन है इसके ऊपर तो प्लीज़ बताना मुझे. यहाँ मैसेज कर दो यार. तुम लोग जो लोग देख रहे हो सबके पास मेरा नंबर भी होगा. बट हाँ, मुझे इस चीज़ के बारे में अगला, मेरे ख्याल से अगला नहीं बट इन द नियर फ्यूचर कभी मुझे इसके बारे में भी डिस्कस करना है कि कैन ट्रस्ट बी कंपार्टमेंटलाइज, कैन इट बी सोर्स्ड, और उसके अराउंड फिर हम और चीज़ें उसके ट्रस्ट करने लगते हैं. व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लाइक ट्रस्टिंग अ पर्सन? पता नहीं, शायद थोड़ा फिलोसफिकल ज़्यादा है ये. बट तीसरा जो मुझे ये बात करना है इस फिल्म में कम्युनिकेशन वाले पार्ट पे, वो ये कि जब आप किसी अनजान लोग के साथ होते हो, जब किसी अननोन पर्सन के साथ होते हो, तो आपको नहीं लगता कि स्मॉल टॉक करना इन अ वे कंफर्टिंग है सिचुएशन अवर्ट करने के लिए? मतलब मैं अगेंस्ट स्मॉल टॉक के, बट मैं इन जनरल जो सोसाइटल टर्म्स हैं, सोसाइटल नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ. मुझे कंफर्ट नहीं लगता, बट मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि स्मॉल टॉक कहीं ना कहीं एक कंफर्ट देता है लोगों को, सिचुएशन नॉर्मलाइज करने के लिए, फेमिलियराइज करने के लिए. हाँ सॉरी. बट जब आप फैमिली के साथ होते हो और आप इन सब लोगों को जानते हो, रहे हो आप उनके साथ इतने सालों से, तब क्या स्मॉल टॉक किया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि उस टाइम पे इफ़ेक्टिव भी है स्मॉल टॉक करना? मुझे मैं जैसे कि मेरा जो वर्जन है, जो मुझे लगता है कि फैमिली का जो एक वर्जन होता है स्मॉल टॉक का, वो होता है सुपरफिशियलिटी या रिपीटेबिलिटी. जैसे कि आप बाहर रहोगे कहीं पे, जैसे मैं बाहर रहता हूँ, मेरा भाई बाहर रहता है, जो मेरी मम्मी है रोज़ फ़ोन करके वही चीज़ें पूछेंगी, खाना खाया कि नहीं, कब उठा, और कुछ नया है तो बता दो, तुम्हारे पास तो कुछ नया होता ही नहीं. अरे कैसे होगा नया, मैं घर पर बैठा रहता हूँ. बट एक सॉर्ट ऑफ एक सुपरफिशियलिटी आ जाती है उस टॉक में, क्योंकि रिपीटेबिलिटी के साथ एक कहीं ना कहीं सुपरफिशियलिटी रहती है. लेकिन ये सुपरफिशियलिटी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये फिर भी सिंसेयर है. क्योंकि स्मॉल टॉक इन अ वे मुझे इनसिंसेयर लगता है, क्योंकि पॉइंटलेस लगता है, अदर देन द फैक्ट कि आप सिचुएशन बस फेमिलियराइज कर रहे हो अपने आप को उससे, या कंफर्ट बना रहे हो सामने वाले बंदे से. जब आपके पास ऑलरेडी कंफर्ट है, एक फैमिली मेंबर है यार, उसके साथ कंफर्ट कैसे नहीं होगा? तो उस टाइम पे जो ये सुपरफिशियल टॉक्स हैं, उनकी कुछ ना कुछ तो सिंसियरिटी रहती होगी, क्योंकि कंफर्ट है, जेन्युइन कंसर्न भी है, और शायद सेंटिमेंट की कदर भी है. अगेन, फैमिली डायनेमिक्स इज वेरी फैसिनेटिंग अगर आप देखो तो. और वो उसके थ्रू, फैमिली डायनेमिक्स के थ्रू जो एक स्मॉल टॉक बनती है ना, वो इतनी पॉइंटलेस लगती है लेकिन फिर भी सिंसियर लगती है. मतलब आई थिंक द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्मॉल टॉक दैट कैन एग्जिस्ट इज प्रॉब्ली द फैमिली स्मॉल टॉक दैट यू हैव, जब आप घर पे बात करते हो उस तरीके से. और कभी कभी उस सिंसियरिटी के बीच में एक डाउट भी होता है, जो इस फिल्म में दिखाया गया. जैसे कि इस फिल्म में फ्रांसिस का एक कैरेक्टर है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इस फिल्म में जो फ्रांसिस का कैरेक्टर है, वो एक क्वेश्चन पूछता है रैंडमली उस एक कॉन्वर्जेशन के बीच में कि डिड आई रेज अस. उसके पास कुछ होता नहीं है बात करने को, साइलेंस हुआ था थोड़ा आगे पीछे, वो अपने आप पूछता है डिड आई रेज अस. वो इतना सुपरफिशियल सा क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है तू, तेरा दिमाग खराब है क्या? बट फिर भी एक सिंसियरिटी दिखती है उस क्वेश्चन में, एक सिंसियरिटी इन द सेंस कि शायद ही इज जस्ट टॉकिंग आउट लाउड, जैसे मैंने पहले कहा, टू रीकन्फर्म इट हिमसेल्फ, या बस वो कंट्रोल एड्रेस करना चाह रहा है कि क्या मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ सिचुएशन की नहीं। बहुत मतलब फैसिनेटिंग लगता है मुझे ये चीज़, मैं बहुत फैसिनेटिंग बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोलना चाहिए फैसिनेटिंग, बट आप इस जर्नी को ही ले रहे हो ना, इस फिल्म की जर्नी को, जो स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हो, कितनी सुपरफिशियल चीज़ है लेकिन इन अ वे कितनी सिंसेयर है। वो जा किस ले रहे हैं, उनका जेन्युइन सेंटिमेंट है कि हमें फादर की ग्रीफ को प्रोसेस करना है, अपने हम एज अ ब्रदर्स एक साथ आना है, वो एक जेन्युइन सिंसेयरिटी है। उस सिंसेयरिटी को वो अचीव करने, सॉरी उस प्रोसेस को वो अचीव करने के लिए बहुत चुतिया मचा रहे हैं, वो गिवन है, लेकिन वो सेंटिमेंट फिर भी है। और ये मुझे पता नहीं यार, मतलब ये मैं शायद सिर्फ फैमिली डायनेमिक्स में ही देख सकता हूँ कि आप स्मॉल टॉक भी कर रहे हो लेकिन इतनी सिंसियरिटी के साथ, ऑल दो उसका कोई पॉइंट नहीं है ऑन पेपर, उसका कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन आप, पता नहीं, ये शायद एक फॉर्म ऑफ स्मॉल टॉक है जो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि हाँ ठीक है चलता है, क्योंकि मैं उसके अंदर के शायद सिंसियरिटी ढूंढ सकता हूँ। शायद आप लोग भी अब अगली बार जब भी अपनी फैमिली से स्मॉल टॉक करोगे तो अंडर के साथ सेंटिमेंट ढूंढना कि ये क्यों है, ये क्या है, उसकी वजह से ना आप अगर शायद स्मॉल टॉक में नहीं, या फिर मतलब हाँ ठीक है, कितनी बार ही आप जवाब दोगे कि आपने क्या खाया है यार, मतलब कभी कभी नहीं खा पाते हैं बाहर रहने के टाइम पे ना, कभी कभी बाहर से खाना पड़ जाता है, कभी कभी नहीं बनते हैं खाना घर पे यार, बर्तन बहुत हो जाते हैं, नहीं खा पाते, ठीक है कितनी बार आप बोलोगे, कितनी बार आप बताओगे, हर बार वो वही बताते हैं आपसे नहीं हो पाता है। बट वो जो एक कंफर्ट है ना उस चीज़ का, वो उसके जाने के बाद ही पता चलता है। तो आई थिंक कम्युनिकेशन से हमारे फैमिली, आई थिंक आई होप हम समझ पाए हो, इस मैंने समझा पाया हो इस फिल्म की कम्युनिकेशन डायनेमिक्स जो है इन तीनों भाइयों के थ्रू, और शायद हम लोग अपने फैमिली के कम्युनिकेशन डायनेमिक्स को इस फिल्म के थ्रू शायद बेटर समझ पाए। शायद हम, हाँ ठीक है, हम लोग इतने डिसफंक्शनल नहीं होंगे जितने ये तीन थे, लेकिन उतनी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगेन जो अंडरलाइंग सेंटिमेंट है वो सिमिलर ही होती है हर जगह। वो बड़ी बहुत अजीब चीज़ है एट द सेम टाइम बहुत, मैंने बोला था फिर से नहीं बोलूँगा तो मैं नहीं बोलूँगा, बट बहुत आई थिंक अब मैं आखिरी के 10 मिनट लूँगा यहाँ पे, और मेरे को बस इनका जो इस फिल्म में जो ग्रीफ प्रोसेस करने का पार्ट है मुझे उसको एड्रेस करना है, क्योंकि मुझे वो बहुत, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहीं देखा नहीं था उस तरीके से, शायद मेरा इंटरप्रिटेशन पता नहीं, शायद गलत हो गया सही हो मुझे नहीं पता, बट इस फिल्म का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि कैसे, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो ये है कि कैसे ये तीनों भाई ग्रीफ प्रोसेस करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो एक सुपरफिशियल रूट अपना रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में जाके बैंडिंग टुगेदर, प्रेयर करके यहाँ वहाँ, ये सब वो सब बहुत ही आर्टिफिशियल चीज़ है, बट ये अंदर से जेन्युइनली चाह रहे हैं कि वो ग्रीफ प्रोसेस कर पाएं। और आप इस फिल्म के आई थिंक सेकेंड हाफ में पता चलता है कि ये लोग कैसे, जब फ्यूनरल के टाइम पे जा रहे थे तो इन्होंने, ये लोग लेट हो गए थे फ्यूनरल के लिए क्योंकि इनके अंदर कुछ कुछ चल रहा था जो ये नहीं कर पा रहे थे। आप मतलब आप ट्रॉमा से कैसे डील करते हो, आप बहुत सारी रैंडम चीज़ें करने लगते हो जो कि सेंस नहीं बनती हैं, और इनके साथ भी वही हुआ, और मतलब उसकी वजह से वो आई थिंक ढंग से जा नहीं पाए, फ्यूनरल पहले स्टार्ट हो गए थे, ये लोग लेट पहुँचे, इनकी मॉम नहीं आई इनके डैड के फ्यूनरल पर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्योंकि काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है एक बंदे की पर्सनालिटी पे, क्योंकि बहुत पर्सनल कनेक्शंस हैं और पर्सनल कनेक्शंस बहुत मैटर कर जाते हैं जब इतने बड़े इवेंट्स होते हैं, तो उनके एक्शन बहुत मैटर कर जाते हैं। तो आई थिंक उस कहीं ना कहीं वहाँ पे उनका जो एक मिसिंग था एक पार्ट, कि वो लेट गो नहीं कर पा रहे थे अपने फादर के डेथ को, क्योंकि ग्रीफ का बहुत बड़ा एक पार्ट होता है, लॉस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि यू नीड टू लेट गो इवेंचुअली. और ये लोग फंसे हुए थे, ये इन लोग को नहीं पता था कि कैसे लेट गो करते हैं. तो इस फिल्म के बीच में एक सीन आता है जब ये चल रहे होते हैं, इनको ट्रेन से निकाल दिया जाता है, ये लोग चल रहे होते हैं अगला अपना पिट स्टॉप देखने के लिए. और ये देखते हैं कि तीन लड़के नदी में कुछ कर रहे हैं और एक मिसहैप हो जाता है और उसमें से तीनों जो लड़के हैं डूबने लगते हैं. ये जाके उनको बचाते हैं तीनों भाई, दो बच जाते हैं एक नहीं बच पाता है और पैट्रिक जो है वो नहीं बचा पाता है. सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसको लगता है, उसको लगता है कि मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन वो नहीं हो पाया. उसको 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 वो बोलता है कि आगे जाके कि मैंने बहुत ट्राई किया इसको बचाने का लेकिन वो नहीं हो पाया. अगेन इन अ वे शायद वो सामने वाले को बता रहा है लेकिन शायद वो खुद को कम्फर्ट कर रहा है, कम्फर्ट नहीं कर रहा, शायद वो खुद को बता रहा है क्योंकि जब उसके फादर की डेथ हुई थी तब भी वो वहीं था. शायद उसका इसी वजह से उसका ग्रीफ भी सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसको लगता होगा कि शायद मैं अपने फादर को नहीं बचा पाया. और इन अ वे ये सीन जब आया था तो शायद पैट्रिक ने एक्सेप्ट किया वो पार्ट की मैंने बहुत ट्राई किया जो मैं कर सकता था, आई हैड हिम बट आई कुडंट सेव हिम. और वो एक्सेप्टेंस इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ लेटिंग गो. और वो जो, और हाँ सिर्फ वो नहीं, उसके बाद जो पूरा एक सीक्वेंस फॉलो करता है उस क्रीमेशन सेरेमनी का जो गांव में होता है इंडिया के, बाय द वे इरफान खान है इस फिल्म में, छोटा सा रोल है, बहुत 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 इम्पैक्टफुल रोल है. वो जो डेथ हुआ जिस लड़के का उसका फादर है और एक पूरा प्रोसेस दिखाता है क्रीमेशन का अपने अपने यहाँ. और उसमें साफ़ करते हैं पहले बॉडी को, उसके बाद उनको प्योरिटी होती है, उसके बाद उसको जलाया जाता है. और इरफान खान और उसके जो दो भाई थे वो दोनों उसको जलाते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं. और ये लोग पार्ट होते हैं उस फ्यूनरल का, इनको इनको बुलाया जाता है उस फ्यूनरल के लिए. और वो बहुत अच्छा सीन होता है जब उनको बुलाया जाता है क्योंकि ये लोग बस में चढ़ गए होते हैं कहीं और जाने के लिए, लेकिन इनको बस से उतार के बोलते हैं कि आप फ्यूनरल में इन्वाइटेड हो, प्लीज़ आओ. इनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो वो इनका छूट गया था उनके फादर की फ्यूनरल के साथ, शायद यहाँ पे वो फुलफिल हो रहा है, शायद यहाँ पे वो एक प्रॉपरली प्रोसेस कर पा रहे हैं एटलीस्ट इस लॉस को. ठीक है उनका शायद उतना कनेक्शन नहीं, लेकिन वो कनेक्शन ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस इतने बड़े इवेंट्स में, और कनेक्ट होने में उतना टाइम लगता है इतने बड़े इवेंट्स में, स्पेशली ऐसे जब आप ऑलमोस्ट पर्सनली इन्वॉल्व थे. आप वो पैट्रिक ऑलमोस्ट पर्सनली इन्वॉल्व था उस बच्चे को बचाने के लिए जो नहीं बचा पाया, सेम अपने फादर के साथ भी बहुत रिजम्बलेंस है दोनों इवेंट्स में. बट जब वो फ्यूनरल में गए उन्होंने देखा कि कैसे ये लोग उसको जलाते हैं, जलाने के बाद वो लोग उसी लेक में उसी पॉन्ड में जाके अपने आप को धोते हैं. जो एशेज थे उस बच्चे के जिसको जलाया गया था वो उनके पूरे बॉडी में थे. और इमीडिएटली हमारी सेरेमनी ऐसी होती है कि हम लोग गए और पॉन्ड में जाके हमने अपने आप को वॉश ऑफ कर दिया, अपने आप को क्लेंस कर दिया, तो हम लोग इमीडिएटली उसको लेट गो कर देते हैं सिम्बोलिकली. आई थिंक मेंटली ऑब्वियसली काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि सोसाइटी भी डिफरेंट है एक तरीके से, बट उन लोगों के लिए फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ वेस्टर्नर, उन लोगों के लिए आई थिंक ये बहुत सिम्बोलिक था ये देखना कि एक पूरा एक जर्नी कंप्लीट हुई है यहाँ पे, एक लॉस की पूरी जर्नी कंप्लीट हुई है. हमने सब कुछ प्रोसेस किया है, हमने सब कुछ सेरेमोनियली परफॉर्म भी किया है और हमने इवेंचुअली उसे वॉश आउट भी कर दिया एक तरीके से, एक सिम्बोलिज्म से हमने उसे जाने भी दिया. एक पूरी लॉस की जर्नी थी जो इन्होंने यहाँ पे अपने सामने होते हुए देखी और शायद उन्हें उतना ही चाहिए था. और आई थिंक ये सबसे ज़्यादा ही फैसिनेटिंग पार्ट था इस पूरे फिल्म का. मेरे को फैसिनेटिंग नहीं बोलना चाहिए इतना ज़्यादा, बट सबसे ज़्यादा इवेंटफुल, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल एटलीस्ट मेरे लिए ये जो इंडियन विलेज के लड़के का जो क्रिमेशन सेरेमनी था ये इस पूरी फिल्म को टाई इन कर देता है, एक सीरियस टोन दे देता है, क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी कॉमेडिक लगती है फिल्म, लेकिन उसके बाद ये जो एक टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं उनके काफ़ी रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस होने लगते हैं इन 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 तीनों भाइयों के लाइफ में और इन तीनों के भाइयों के डायनेमिक्स में. तो ये इनके कैरेक्टर आर्क का एक इन अ वे जो टर्निंग पॉइंट होता है ये होता है, शायद हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी इनके साथ एक कैरेक्टर आर्क पे जा रहे हैं जैसे मैंने पहले मेंशन किया था. और इनका जो क्लाइमैक्स होता है वो उस फिल्म के एंड में आता है, जब आप देखोगे कि ये लोग नई ट्रेन पकड़ रहे होते हैं बंगाल लैंसर, और इनके जो लगेज होती है, जो बाय द वे जो लगेज है वो सारे उनके फादर के लगेज है, JLW लिखा हुआ है उसमें, और वो उसको वेस एंडरसन ने उसको पूरा एक सिंबल की तरह यूज़ किया है इस पूरे फिल्म में, कि ये एक लगेज इनके फादर का है जो इनके ऊपर है, उस ग्रीफ का है जो इनके ऊपर है. और जब वो बंगाल लैंसर पे जाते हैं तो काफ़ी एक मेटाफोरिकल लेट गो होता है उस लॉस का, उस ग्रीफ का, क्योंकि जब वो चढ़ रहे होते हैं अपने सारा अपना सामान ड्रॉप करते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं. और पैट्रिक जो सबसे ज़्यादा ग्रीफ स्ट्रिकन था मेरे हिसाब से, सबसे लास्ट में छोड़ता है वो अपना सामान, लेकिन छोड़ के उस ट्रेन पर चढ़ जाता है और अब उनकी फिर से जर्नी स्टार्ट होती है. तो अगेन ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि एक जो फैमिली के डायनेमिक की हैबिट्स होती हैं वो नहीं ब्रेक होती हैं, जिस तरह से आप बात करते हो वो नहीं ब्रेक होता है, बट आप फिर भी ग्रो करते रहते हो, बहुत फैसिनेटिंग है. हो गया, मेरा कैमरा भी ख़त्म हो चुका है आई थिंक, तो मेरे को और नहीं टाइम वेस्ट करना चाहिए, बट आई थिंक दिस इज़ अ गुड वे टू एंड, दिस इज़ अ गुड वे टू कंक्लूड दिस एपिसोड. आपने अगर देखी नहीं है फिल्म, आपको देखना चाहिए प्लीज़, बहुत ही प्यारी फिल्म, बहुत ही अच्छी फिल्म है. अगर आपको फिल्म पसंद है जहाँ पे आप पर्सनली इन्वॉल्व हो सके हो तो ये है उसके लिए. एंड होपफुली अगर आप देखो तो मुझे बताना प्लीज़ हाँ कि कैसी लगी, किस मैं जहाँ पे भी आपको मिलता अवेलेबल हूँ मेरे को आप वहाँ बता दो. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग. अगली बार जब मैं अगली फिल्म देखता हूँ तो फिर से आता हूँ बात करने आप लोगों से.